11। दुर्योधन ने विभिन्न देशों में जो दूत भेजे थे वे वापस आ गए। अवंती, चेदी, मगध, संक्षप्तक, सिंध आदि देशों के बलाढ्य राजा हमें सैनिक सहायता देने को तैयार थे। उपप्लाव्य से श्री कृष्ण प्रस्ताव लेकर आएंगे, यह भनक सबको लग ही चुकी थी। इस प्रसंग में उनके पुरोहित ब्रह्म गार्ग्य ऋषि एक बार हस्तिनापुर में आकर विदुर और पितामह से भी मिल चुके थे। उनकी क्या क्या बातें हुई यह किसी को भी ज्ञात नहीं हुआ। हाँ, श्री कृष्ण किस दिन आएंगे इसका अवश्य पता चल गया था। कार्तिक की पौर्णमासी के दिन वे आने वाले थे। वे राज्य में पांडवों का आधा राज्य भाग मांगने वाले थे। कुरु योद्धाओं ने स्पष्टतः नकार देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। शोण के वध की कसक अकेले मुझे ही नहीं बल्कि सभी कुरु योद्धाओं को विक्षुब्ध कर रही थी। मेरा मन गरुण तो क्रोध के शिखर पर जा बैठा था। एक ही निश्चय सुस्थिर था, पांडवों से युद्ध, निर्णायक और अंतिम युद्ध, अर्जुन को मौत के घाट उतारना। यह निश्चय यद्यपि सुस्थिर था तथापि औरों की तरह ही प्रस्ताव लेकर आने वाले श्रीकृष्ण के प्रति मेरे मन में भी आदर था। कोहरे के पटल फाड़ता हुआ कार्तिक पूर्णिमा का दिन उदित हुआ। श्रीकृष्ण प्रेमी नगरजनों ने अपने अपने घरों के सामने अशोक और आम्र वृक्षों के पत्तों और शाखाओं के वंदरवार सजाए थे। सुगंधित जल से आंगन सिंचित सम्मार्जित कर उसमें आसान स्थान पर सुदर्शनाकार अल्पनाएं चित्रित की थी। पुष्प मालाओं से सजाकर ध्वज और तोरण ऊंचे लगाए गए थे। एक श्रद्धालु श्रीकृष्ण भक्त ने तो अपने स्त्री द्वारा शिशुपाल वध का प्रसंग आंगन में अल्पना में चित्रित करवाया था। प्रत्येक देहरी पर गंगा जल से परिपूर्ण सुवर्ण कलश रखे हुए थे। सुस्नान सुहागिने निराजना प्रज्वलित करने में मग्न थी। महामंत्री आर्य विदुर ने कुरुओं का विशेष राजध्वज शिखर भवन के शिखर पर चढ़ाया। आज पहली बार हस्तिनापुर वासियों को श्रीकृष्ण के दर्शन होने जा रहे थे। यद्यपि श्रीकृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर आ रहे थे तथापि उनके प्रति मेरे मन में अनादर बिल्कुल नहीं था। मेरी शत्रुता पांडवों से थी, जिन्होंने मेरी घोर उपेक्षा की थी उनसे भी, मेरे एक पुत्र और प्राणप्रिय बंधु का वध करने वाले अर्जुन से थी, एक सुत पुत्र की एक क्षत्रिय से थी, वह श्रीकृष्ण से नहीं थी। प्रत्येक वस्तु में मुझे सोण और सुदामन दिखाई दे रहे थे, इसीलिए अर्जुन का नाम सुनना भी सहन नहीं होता था। उपप्लाव्य से निकलकर उन्होंने गंगा के किनारे स्थित वृक्षस्थल उपनगर में आकर डेरा डाला। नगरजनों ने वहां तक का मार्ग सजा दिया। सूर्योदय के सर्वस्पर्शी सुकुमार किरण हस्तिनापुर से लिपट गई। सीमा पर होने वाला असंख्य वाद्यों का कोलाहल राजभवन में भी सुस्पष्ट सुनाई देने लगा। वह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि श्री कृष्ण सीमा पर आ चुके हैं। अश्वत्थामा को साथ लेकर मैं उनका स्वागत करने के लिए सीमा तक गया। वृक्षस्थल छोड़कर वे अब हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहे थे। 7 श्वेत शुभ्र घोड़ों के सुवर्ण मंडित रथ में 4 व्यक्ति बैठे हुए थे, युयुधान, ब्रह्म गार्ग्य, श्रीकृष्ण और सारथी दारूक। श्रीकृष्ण का नीलवर्ण शरीर उसी तेज में से दमक रहा था जैसा कि मैंने वर्षों पहले इंद्रप्रस्थ में देखा था। उनके देखते समय अपने शरीर पर सदैव की भांति कवच नहीं है यह जानकर मन विषण हो गया। इस कमी की अनुभूति हृदय को कुतरने लगी। मेरी ओर देखकर यादव राज श्रीकृष्ण मुस्कराए। उनके हस्तिदंत जैसे शुभ्र दांत सुनहली सूर्य किरणों में चमक उठे। मैंने उनके मस्तक पर रखे मुकुट की ओर ध्यान से देखा। उसकी बनावट भूषणागार में रखे हुए मेरे उस मुकुट जैसी ही थी, यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। प्रणाम यादव राज, उत्तरी संभालते हुए मैंने उनको वंदन किया। अर्जुन ने मुझ पर जो अन्याय किए थे उनको ये अनुभव क्यों नहीं करते? जय तुकर्ण, उन्होंने धीरे से कहा। पितामह, विदुर, विश्वकर्मा, द्रोण आदि से घिरा हुआ उनका रथ हस्तिनापुर में प्रवेश करने लगा। वाद्यों के मिश्रित ध्वनि राजमार्ग के दोनों ओर खड़े वृक्षों के पत्तों को थर थर कपाने लगी। नगरजन भक्तिभाव से सुगंधित पुष्प और कुमकुम की वर्षा उन पर करने लगे। हाथ जोड़कर साहस वदन वे सबका प्रेम स्वीकार करने लगे। दारुक के वस्त्र अच्छी तरह सन गए। श्री कृष्ण को ले जाने वाले रथ को वह अच्छी तरह ढांक नहीं पा रहा था, क्योंकि एक तो घोड़ों की आंखों में कुमकुम भर गया था और दूसरे सैकड़ों नगरजन उनके खूनों पर श्रीकृष्ण के सामने धड़ाधड़ लूट लगा रहे थे। अर्ध घटका की अवधि में उनका रथ कुछ हाथ ही आगे बढ़ सका था। घोड़ों के खुरों पर सुहागिने ने जो जलकुंभ उलड़े थे उनसे उन्हीं के द्वारा बड़े परिश्रम से चित्रित की गई अल्पनाएं धुलने लगी। सूर्यदेव माथे पर चढ़ने लगे। यादवराज, भगवान श्री कृष्ण, शोण का हृदय विदारक अंत भूल कर विचित्त हुए से नगर जन गज रहे थे, जय तु जय तु। किसी की भी जय जयकारों से पहले हस्तिनापुर इतना गूंजा न होगा जितना कि आज गूंज रहा था। श्वेत वर्ण के घोड़े कुमकुम के कारण रक्तवर्णी दिखाई देने लगे। श्री कृष्ण के पीताम्बर पर कुमकुम की इतनी परत चढ़ गई कि वह पीताम्बर पीतवर्ण का है वह स्वयं वे भी नहीं बता सकते थे। समस्त राजमार्ग पर पुष्पों के ढेर लगे हुए थे। शांत चित्त से उस राजयात्रा में वायुजित पर आरूढ़ होकर जाते समय मुझे क्षण भर को आभास हुआ कि मैं स्वर्ग के साम्राज्य में ही हूँ, परंतु उस चैतन्य भरे हर्षोन्माद में दुर्योधन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दोपहर के चिलचिलाती धूप में श्री कृष्ण का पुष्पों से आच्छादित तथा कुमकुम से सना हुआ राजरथ हस्तिनापुर के पुरातन राजभवन के महाद्वार पर आ खड़ा हुआ। संपूर्ण शरीर पर से कुमकुम झटकते हुए उत्तरी संवारते हुए वे शांतिपूर्वक रथ से नीचे उतरे। अन्य स्त्रियों के साथ विशाली ने भी उनकी पंचारती उतारी। कुमकुम का एक तिलक कांपते हाथ से उसने उनके विशाल भाल पर लगाया। उसके जीवन में श्री कृष्ण को देखने का यह पहला ही अवसर था। राजभवन के शिखर पर त्रिकोणी भगवे राजध्वज की ओर देखते हुए उन्होंने महाद्वार की देहरी लांघी। किसी ने कहा, राजभवन आज पवित्र हो गया। राजन, मैं इतरत्र कहीं भी जाना नहीं चाहता, सीधे सभागृह में चलो। स्वागतार्थ खड़े हुए महाराज इतराज की निमिलित आर्द्र पलकों की ओर देखते हुए मृदु स्वर में उन्होंने कहा, चलिए यादवराज। आवाज की दिशा में सिर हिलाते हुए महाराज ने अपनी अनुभूति प्रदर्शित की। सभी कुरु योद्धाओं के साथ वे सभागृह की ओर चल दी। राजभवन की सीढ़ियां चढ़ते हुए वे ठीक 105वीं सीढ़ी पर ठहर गए। अब केवल एक ही सीढ़ी बची थी। मेरे कानों के कटे हुए निम्न भाग की ओर देखकर हंसते हुए उन्होंने 106वीं तथा अंतिम सीढ़ी पर पैर रखा। उन सीढ़ियों के संबंध में मेरे मन में अब कोई औत्सुक्य नहीं रहा था। यदि संभव होता तो उन सभी को ढहाकर उनसे मैं शोण की समाधि बना देता। राजसभागृह में प्रवेश करते श्री कृष्ण ने उस पुरातन राज सिंहासन को सिर झुकाकर प्रणाम किया। ढालकर बनाई गई कुरुओं के मान चिन्ह सूर्यदेव की स्वर्ण प्रतिमा की ओर देखते हुए वे आमात्य विश्वकर्मा द्वारा दिखाए जाए गए आसन पर शांतिपूर्वक विराजमान हो गए। सबने अपने अपने आसन ग्रहण कर लिए। महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी देवी राज सिंहासन पर आसीन हो गए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और शायद अंतिम राजसभा थी। श्रीकृष्ण के दर्शनों के लिए आतुर योद्धाओं से सभागृह खचाखच भर गया था। अपने आसन पर बैठकर मैं अपने पैरों की ओर देखने लगा, वे संकुचित क्यों होते गए थे। इस रहस्य को जीवन की इस सुदीर्घ दौड़ में मैं कभी सुलझा नहीं पाया था। आमात्य वृषवर्मा ने सभा का प्रयोजन बताकर कुरुओं की ओर से रस भरी वाणी में श्री कृष्ण का स्वागत किया। नीचे बैठे हुए वे बोले, अब यादवराज भगवान श्री कृष्ण अपने आगमन का प्रयोजन स्वयं ही बताएंगे। सभी गुरु शांतिपूर्वक उस पर विचार करें। समय महत्वपूर्ण है, परिस्थिति विकट है। उत्तरी संवारते हुए श्री कृष्ण आसन से उठे। उनके उत्तरी के सलवटों में संचित कुमकुम उनके घुटने से नीचे पावड़े पर गिर पड़ा। तीव्र भेदक स्वर में वे बोलने लगे। उनके दीर्घ होंठ फड़कने लगे। भेदक नेत्र सभागृह पर मंडलाकृति घूमने लगे। कर्ण, भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, द्रोण, कृप, विदुर, अश्वत्थामा, शकुनि, जयद्रथ, दुशासन और दुर्योधन, यहाँ उपस्थित कुरु योद्धाओं, मैं यादवराज के रूप में नगर में नहीं आया हूँ, न पांडवों के मैं मेरे भाई के रूप में आया हूँ, श्री कृष्ण के रूप में भी नहीं आया हूँ, एक न्याय पक्ष के पक्षधर के रूप में इस पुरातन राज सिंहासन के पास आज न्याय मांगने आया हूँ, क्योंकि इस राज सिंहासन की ख्याति न्यायदान के लिए अखिल आर्यावर्त में प्रकाशमान रही है। सूर्य प्रतिमा को मानचिन्ह मानने वाले कुरुओं, क्या आप लोग पांडवों को न्याय दोगे? मैं संधि का प्रस्ताव लेकर नहीं वरन सत्य का वज्रपट लेकर आया हूँ। पांडवों के सहनशीलता की सत्य परीक्षा आपने आज तक मर्यादा की सीमा से भी आगे तक की है। राजमाता कुंती देवी सहित पांडवों को लाक्षागृह में दग्ध करने का युद्ध शास्त्र आपको किसने सिखाया? यह बात युवराज दुर्योधन क्या मुझे बता सकेंगे? पितृ छत्र रहित पांडवों को खांडव वन का कंटीली लताओं एवं वृक्षों से भरा एवं वन्य पशुओं द्वारा अपने गर्जनाओं से प्रकंपित लोक विलक्षण साम्राज्य देने वाले शकुनि मामा, क्या अपने राज्य गांधार देश की राजनगरी छोड़कर दंडकारण्य चले जाएंगे और वहां नई नगरी बसाकर दिखा देंगे? अपना द्वारका का राज्य दाव पर लगाकर मैं आज युद्ध खेलने बैठूं तो गांधार देश दाव पर लगाकर मेरे साथ क्या वे आज युद्ध खेलेंगे? अपनी पत्नी को दाव पर लगाकर यदि उसको हार जाए तो उसे इस सभागृह में सबके सामने खींच कर लाने की सम्मति मुझे देंगे? 13 वर्ष की यात्रा में वनवास पर्यंत नंगे पैर रहेंगे क्या? विराट नगर से गोहग्रहण करने के लिए सभी कुरु योद्धा इस नगर से बाहर चल पड़े थे। उसी प्रकार मथुरा द्वारका के सभी यादव योद्धा और पांडव बिना किसी पूर्व सूचना के यदि इस नगर में घुस आए तो क्या आप सहन कर लेंगे? आप में से प्रत्येक के हृदय में एक शुद्ध शाश्वत भावना भी है? उसको साक्षी बनाकर बताइए कि आज तक पांडवों को आपने कौन सा न्याय दिया? न्याय किसे कहते हैं यह बात आज आप जानते भी हैं क्या? फिर भी आपको और पांडवों को मैं एक ही मानता हूँ, इसलिए आज भूतकाल के कटु सत्यों को भस्मासात कर मैं कहता हूँ कि हे राजा धृतराष्ट्र, पांडवों को उनका आधा राज्य देकर भावी विध्वंस के विराट वडवानल को बुझा दे दिए। बोलिए, इस न्यायदान के लिए क्या आप तैयार हैं? कशाघात जैसे उनके शब्दघातों से सर्वत्र भीतिदायक शांति फैल गई। उत्तर देने के लिए महाराज उठ नहीं रहे थे, कोई भी हिलडुल नहीं रहा था। कहो, कोई तो कहो, आपका अंतिम निर्णय क्या है? उन्होंने पुनः सभागृह पर दृष्टि घुमाते हुए सबको लक्ष्य कर कहा। स्वर की तीव्रता और अधिक बढ़ गई थी। मैं कहता हूँ, तेरे वक्तव्य से ठंडे पड़े हुए कुरु योद्धाओं का अंतिम निर्णय मैं तुझे आज स्पष्ट शब्दों में बताए देता हूँ। पांडवों को आधा राज्य नहीं मिलेगा। दुर्योधन तपाक से उठकर बाहों में तानता हुआ अपनी छोटी छोटी परंतु पुष्ट उंगलियों को हिलाता हुआ बोला, क्यों? उनका इस राज्य से कोई संबंध ही नहीं है। वे महाराज पांडु के पुत्र हों तब भी नहीं। राज्य का विभाजन कल उसके शत और परसों सहस्र टुकड़े कर देगा। राज्य को पांडवों ने एक श्रीफल समझ लिया है क्या, जिसे 10 आश्रम आवश्य मिलकर बांट लें? आधा राज्य नहीं देते हो तो न सही, परंतु खांडवन में इंद्रप्रस्थ का उनका राज्य, जिसे उन्होंने बसाया समृद्ध किया, वह राज्य उनको लौटा दोगे क्या? जो न्याय है सत्य है, उसे दुराग्रह द्वारा अमान्य मत करो। नहीं, उस राज्य को वे द्वित में गंवा चुके हैं, वह तो उनको कभी वापस नहीं मिलेगा। दुर्योधन ऐसे बोल रहा था जैसे गदा का प्रहार कर रहा हो। स्फुलिंग आपस में टकरा रहे थे, बड़वाग्नि को आमंत्रण दे रहे थे। आश्रयार्थ सहारे के रूप में इस विशाल हस्तिनापुर राज्य से कम 5 ग्राम ही तुम उन 5 बंधुओं को देने को तैयार हो क्या? हाथ की 5 उंगुलियां एकत्रित कर श्री कृष्ण ने 5 का अंक प्रदर्शित किया। सभी सभासद योद्धाओं के हृदय द्रवित हो उठे, कानाफूसी शुरू हो गई। उनको बढ़ने न देकर दुर्योधन तुरंत ही पुनः बोल उठा, नहीं नहीं नहीं, त्रिवार नहीं, त्रिकाल नहीं, 5 ग्राम तो क्या, बिना युद्ध किए इस राज्य का सुई के अग्रभाग का पथरथराते हुए धूल के कण बराबर भी कोई भाग पांडवों को नहीं मिलेगा। यही नहीं, बल्कि यह उत्तर लेकर लौटने वाले तुम्हारे पैरों से चिपट जाने वाले धूलि कण भी पांडवों के हाथों में न पड़े, इसलिए मैं उनको भी झड़वा लेता। परंतु भगवान कहे जाने वाले छली और ढोंगे श्री कृष्ण, मैं नहीं चाहता कि इस निमित्त से भी मेरे सेवकों के हाथ तुम्हारे अमंगल पैरों का स्पर्श करें। जाओ, अपने संदिग्ध प्रस्ताव के चीथड़ों को पीताम्बर में लपेट कर तुम इस हस्तिनापुर की सीमा से बाहर चले जाओ, नहीं तो दुर्योधन। श्री कृष्ण की ओर थरथराने लगे, नेत्र आरक्त हो गए। समस्त सभागृह क्षण भर पहले वे उनके स्वागत समारोह को भूलकर हाहाकार कर उठा। बहुत से ऐसे उठकर खड़े हो गए मानो बिजली का झटका लग रहा हो। मेरे कान सुन्न हो गए, आंखें बंद हो गई। मेरे कानों के पास अपने होंठ लाकर दुर्योधन उन्मत्ता से धीरे धीरे बोला, कर्ण, समस्त उथल पुथल के मूल कारण इस ग्वालियर को ही मैं आज बंद करूंगा। नगरजनों के स्वागत समारोह को स्मरण करता हुआ, मथुरा के कारागृह में जन्म लेने वाला यह ग्वाला गुरुओं के कारागृह के अंधकार में ही नष्ट हो जाना चाहिए। उसके शब्द मेरे कानों में तप्त लौह रस की तरह प्रविष्ट हुए, लहराते हुए विशैले भुजंग की तरह वे मेरे मस्तक में दंश मारने लगे। जीवन में पहली बार ऐसा विरोध प्रकट करता हुआ मैं उस पर चिल्लाया, दुर्योधन तुम होश में हो, किसे बद्ध करने का स्वप्न देख रहे हो तुम? कर्ण, उससे कहो कि अपने राज्य की जितनी श्रृंखलाएं हों सब मंगवा ले, और सामर्थ्य हो तो मुझे बद्ध कर ले। श्री कृष्ण ने अपने विशाल नेत्र बंद कर लिए। क्षण भर को वो मुझे भी भान नहीं रहा। मुझे ऐसा आभास होने लगा कि उफनते हुए दूध की तरह उनके शरीर का कण कण फूलने लगा है। क्षण भर में ही उनके मुकुट का सुपक्ष सभागृह की छत से जाकर लग गया। उनका विशाल रूप धारण करने वाला शरीर पुनः एक बार दिव्य तेज कणों से ओतप्रोत हो उठा। झंझावात को भी पीछे छोड़ने वाले वे तेज कर चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत अत्यंत प्रचंड गति से चक्कर काट रहे थे। मुझे यही लगने लगा कि उनके दिव्य शरीर से निकलने वाले असह्य प्रकाश वलयों से सभागृह के कठोर पाषाण स्तंभ कहीं पिघल न जाए। सभी कुरु योद्धा ऋषि मुनि सेवक सेविकाएं भयग्रस्त होकर उस विराट देह के आगे लौटने लगे। देह पर कवच न होने के कारण उस तेजस्वी की आँच अब मुझ तक भी पहुँच रही थी। कुंभ सदृश गोलाकार उस तेजस्वी मुख से शब्द भी तेज का ही रूप धारण कर बाहर निकलने लगे, सभागृह की छत को छिन्न करने लगे। अब मुझे भान हुआ, उस समय श्री कृष्ण के शब्द मेरे कानों में पड़े, युद्ध युद्ध से किसी भी समस्याएं कभी भी किसी की समस्याएं नहीं सुलझेंगी। युद्ध मानवीय क्रौर्य का उन्मूलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक कठोर उपाय है। युद्ध से मानव जाति का कभी कल्याण नहीं होता, क्योंकि वह जीवन का अंतिम ध्येय नहीं है। जीवन का अंतिम ध्येय है प्रकाश, ज्ञान का, विज्ञान का, आत्मा का प्रकाश। यदि वह प्रकाश तुम सबको युद्ध की मृत्यु से भी प्राप्त होने वाला हो तो मैं भी यथा आवश्यक भयंकर युद्ध प्रज्वलित करूंगा। जिस मिट्टी से तुम लोगों ने जन्म लिया है, जिसके अंतरंग के रस से सिक्त धन खाकर तुम्हारा पालन हुआ है, उस मिट्टी में ही तुम्हारे उत्तान शरीरों को चैतन्यहीन करके मिला दूंगा। यह युद्ध संसार को तुम्हारे अहंकार, पथभ्रष्टता, कपट, क्रौर्य, प्रतिशोध, सभी राक्षसी विकारों की ही कथा का पीढ़ियों तक सुनाता रहेगा। इसलिए ध्यान रखो, इस युद्ध में मैं स्वयं यद्यपि हाथ में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, फिर भी धरती पर भारभूत तुम्हारे गर्वीले उन्मत्त शरीरों को उसी की मिट्टी में एक रूप कर दूंगा। सब चुप थे, मानो वाणी मूक हो गई हो। अकेले महाराज धृतराष्ट्र दृष्टि न होने के कारण शायद समझ ही न पाए कि सभागृह में क्या हो रहा है। सिंहासन से उठकर वे भयग्रस्त स्वर में बोले, यादव राज, आप भोजन राजभवन में कीजिएगा। यह सुनकर उस राजा के अंधेपन पर रोया जाए कि हंसा जाए, यही किसी की समझ में नहीं आया। राजन, आज मैं हस्तिनापुर में ही भोजन करूंगा, परंतु तुम्हारे इस न्याय भ्रष्ट राजभवन में नहीं, बल्कि विदुर की पर्णकुटी में, राजमाता कुंती देवी के हाथ का। वे अपना आसन छोड़कर जिस शांत चाल से सभागृह में आए थे, उसी शांत चाल से बाहर चल दिए। उनको विदा करने के लिए पितामह, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा सभी जन उनके पीछे पीछे राजभवन के महाद्वार तक गए। वे भयभीत हो गए थे, व्याकुल हो गए थे। श्री कृष्ण कौन थे? एक गोपाल, एक योद्धा, यादवराज, पांडवों के मेरे भाई, या दुर्योधन के कथनानुसार इंद्रजालिक तांत्रिक? मेरे मस्तक में प्रश्नों के घनाघात होने लगे। ओह, श्री कृष्ण निश्चय ही असाधारण है, ईश्वरीय अंश से युक्त है। विचारों के अचूक बाण शंकाओं को मस्तक तोड़ रहे थे। मैं भी उठकर सबके साथ उन्हें पहुंचाने के लिए महाद्वार तक आया। दहली पार करते समय वे क्षण भर रुके, पीछे मुड़कर उन्होंने सबको प्रणाम किया। मैंने भी अपने हाथ जोड़े। अघटित घटित हुआ था और भी कुछ घटित होने वाला था। कर्ण, आओ। उन्होंने दाएं हाथ की उंगुलियां मोड़कर मुझे पास बुलाया। पास जाते उन्होंने एक बार की मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनके उस दिव्य स्पर्श से अनुभूत संवेदना की एक लहर से मेरे शरीर में दौड़ गई। उन्होंने सबके बीच मुझे ही क्यों पास बुलाया? राज्यसभा में भाषण के प्रारंभ में सर्वप्रथम मेरा ही उल्लेख क्यों किया? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक हाथ में मेरा हाथ लेकर दारुक को पीछे बैठने का संकेत कर उन्होंने दूसरे हाथ से अपने चपल घोड़े की बलगांव को झटका दिया। पीछे मुड़कर भी न देखते हुए वे अपने धवल वर्णी सप्त घोड़ों के रथ को दौड़ाने लगे। पीछे की बैठक में युयुधान, ब्रह्मगार्ग और दारुक बैठे हुए थे। मेरा मन मिश्रित भावनाओं से असमंजस में पड़ गया। उन्होंने सबको छोड़कर केवल मुझे ही अपने साथ अपने हाथ में पकड़कर रथ में क्यों चढ़ाया था? किसी का भी हाथ अपने हाथ में न लेने वाले श्री कृष्ण ने मेरा हाथ अपने हाथ में क्यों लिया था? उनके रथ चक्रों के साथ मेरे विचार चक्र दौड़ रहे थे। एक ओर खड़े डौलदार आम्रवृक्ष की सघन पर्णराज्य में से एक कोकिल पक्षी सप्त सुरों में तान लेता हुआ हमारे रथ पर से उड़ता हुआ पश्चिम की ओर चला गया। उसकी ओर देखते समय मुझे अस्त होते हुए सूर्यदेव के दर्शन हो गए। आज संध्याकाल का अर्घदान रह ही गया, मैंने मन ही मन कहा। दोनों ओर कदम अशोक, आम्र, पिप्पल आदि अनेक प्रकार के वृक्ष तीर की तरह दौड़ते हुए पीछे छूट रहे थे। रथनगर से बाहर जाने के लिए दौड़ता जा रहा था। मेरे जीवन का राजरथ भी उनके सहचर्य विकीर्ति के राजमार्ग पर पूरे वेग से दौड़ रहा था। श्री कृष्ण के रक्तवर्णी मृदुल हाथ में हाथ डाले, वायु के साथ फरफर करने वाला उनका पीताम्बर निरंतर मेरी जंघा को स्पर्श कर रहा था। मोड़ लेते समय झुका हुआ उनका नीलवर्णी शरीर मेरे शरीर पर निशंक भाव से पुनः पुनः अपना भार डाल रहा था। विदुर जी की पर्णकुटी अब अच्छी तरह दिखाई देने लगी तो एक घने वट वृक्ष के पास आते ही उन्होंने बलगाएं खींचते हुए रथ की गति कम की। नगर की सीमा के पास हम बहुत पहले आ चुके थे। सामने सैकड़ों वर्षों से जलदान करते हुए बहने वाला गंगा का जलदूर स्तर अस्त होते हुए प्रदीर्घ सुवर्ण किरणों में चमक रहा था। गरुड़ों का एक झुंड अत्यधिक ऊंचाई पर मैनाक पर्वत पर स्थित अपने निवास स्थान की ओर लौटता हुआ चला गया। उसको देखते मुझे सोन की याद आ गई। एक बार उसने पूछा था, भैया तुम जाओगे क्या गरुड़ पक्षी की तरह ऊंचे और ऊंचे? आज सोन नहीं था, थी उसके हृदय आंदोलित कर देने वाली स्मृतियां। एकदम बलगाएं खींच ली गई, रथ रुक गया, मेरे विचार चक्र भी रुक गए, नगर के बाहर की सीमा समाप्त हो गई थी। चलो कर्ण, उन्होंने मुझे एक वट वृक्ष की घनी छाया में चलने का संकेत किया। रथ को मार्ग पर ज्यों का त्यों छोड़कर वे मेरा हाथ अपने हाथ में लिए हुए उस विशाल वृक्ष की एक घनी शाखा के नीचे आए। जमी हुई धूल अपने उत्तरी से झाड़कर वह यादवों का तेजस्वी नायक एक काले पाषाण पर बैठ गया। उनके पार्श्व में स्थान होते हुए भी मैं उनके चरणों के पास बैठ गया। कलिंग देश में महेंद्र पर्वत पर ऐसे ही एक वटवृक्ष के नीचे भगवान परशुराम को मस्तक मैंने अपनी जंघा पर रखा था, वह दिन मुझको याद आया। आज मेरा हाथ श्री कृष्ण के हाथ में था, वैसा ही वटवृक्ष सिर पर था। अस्त होते हुए सूर्य की तिरछी सुनहरी किरणों में श्री कृष्ण का नीला शरीर चमक रहा था। कंठ में पुष्कराज, मणिक, मौक्तिक, हीरे एवं वैदुर्य के हार उनके श्वासोच्छ्वास के साथ लय में ऊपर नीचे हो रहे थे। मस्तक पर रखा हुआ सुवर्ण मुकुट परावर्तित प्रकाश वलय फेंक रहा था। मैं जिस हरियाली पर बैठा था उसमें से एक चपल धूल दूसरे कीट उनके कुमकुम में पीताम्बर पर चढ़ता हुआ मुझको दिखाई दिया। कर्ण, भारी आघात देने वाला एक सत्य बताने के लिए ही मैं आज सभी लोगों के बीच से केवल तुम्हें नगर से बाहर लेकर आया हूँ। उस अस्त होते हुए तेज को देखो और क्या कह रहा हूँ यह ध्यान से सुनो। दो पर्वतों के बीच सरकते हुए सूर्यदेव की ओर उंगली से संकेत कर उन्होंने बड़े स्नेह से कहा। उनकी आवाज मुरली की तरह मधुर थी। कहो यादवराज, धरती इस तरह इधर से उधर भले ही हो जाए परंतु मुझे अब कोई आघात नहीं लग सकेगा, मैंने उनकी सुतीक्ष्ण नासिका की ओर देखते हुए कहा। कर्ण, कर्ण तुम सूत पुत्र नहीं हो, राधा और अधीरथ के पुत्र नहीं हो। मेरी आंखों में गहराई तक जाकर उन्होंने मेरे मन के सरोवर को एकदम विक्षुब्ध कर दिया। तत्क्षण उठकर मैं बड़ी जोर से चीख उठा, क्या कह रहे हो? मैं सूत पुत्र नहीं हूँ, राधा माता का पुत्र नहीं हूँ। नहीं यादवराज, यह असत्य है, असत्य। भले ही एक बार अपना दर्शन सुदर्शन चला दो परंतु जीवा का यह खड्ग मत चलाओ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सत्य है। जो क्षत्रियों में भी शोभा दे ऐसे एक दिव्य कुल के क्षत्रिय हो तुम राजमाता कुंती देवी के प्रथम पुत्र हो। तुम्हें तुम्हारा कुल बताने में मुझसे भूल नहीं हो रही है। पश्चिम क्षितिज पर ध्यान से देखो, उस साक्षात सूर्यदेव की हिरण्य गर्भ के तेज पुत्र हो तुम। उन्होंने पश्चिम क्षितिज की ओर उंगली उठाई। मेरे संपूर्ण शरीर के रक्त के कण उनके शब्दों के साथ तेजी से घूमने लगे। हर्ष, अभिमान, महत्ता के प्रतीत, इनसे मन का कोश फूट गया और वह आंखों के पनारे से धारा प्रवाह झरने लगा। ऐसी इच्छा होने लगी कि मैं सूर्यपुत्र हूँ, मैं सूर्यपुत्र हूँ, यह कहकर आनंद से चिल्लाता हुआ उन्मत्त होकर थय थय नाचूं। इच्छा हो रही थी कि मेरे जीवन के राजवस्त्र को सामाजिक रूढ़ियों की, स्वार्थ की और अहमन्यता की धूल में वर्षों तक निर्दय होकर कुचलने वाले लोगों से गरज कर कह दूं कि मैं सूर्यपुत्र हूँ, मैं सूर्यपुत्र हूँ, तेज का पुत्र हूँ, हीन नहीं हूँ, क्षुद्र नहीं हूँ। कर्ण, तुम राधेय नहीं हो, कौंतेय हो, इसीलिए पांडवों के सगे भाई हो। बड़े पाषाण पर से उठकर श्री कृष्ण ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनके शब्दों की अपेक्षा उनका स्पर्श शीतल था। श्री कृष्ण, सत्य क्या है और असत्य क्या है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यदि मैं कौंतेय हूँ तो कुंती देवी से दूर क्यों हूँ? यदि पांडव हूँ तो पांडवों से अलग क्यों हूँ? सूर्यपुत्र हूँ तो अंधकार के साम्राज्य में क्यों भटक रहा हूँ? यह एक लंबी कथा है। जगत की किसी भी पाषाण हृदय मानव के अंतःकरण को द्रवित कर दी, इतनी करुण है यह। सामाजिक रूढ़ियों की क्रूरता की, एक माता के मुख क्रंदन की। कुंती देवी को कौमार्यावस्था में दुर्वासा ऋषि के दिव्य मंत्र से सूर्य से तुम प्राप्त हुए। उस समय वे भोजपुर राज्य में थी। कौमार्यावस्था में पुत्र प्राप्ति समाज की दृष्टि में राजकन्या को कलंकित करने वाली घटना थी। तुम्हें लेकर वे किसी भी स्थिति में जीवित नहीं रह सकती थी। जग उनको जीने नहीं देता और यदि वे जीवित न रही होती तो तुम्हारा भी अस्तित्व न रहा होता। इसलिए हृदय पर हिमालय सदृश पाषाण रखकर उस महान स्त्री ने अश्व नदी में तुम्हें बहा दिया। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ उसी दिन एक पेटिका में अश्व नदी से चरमणवती, यमुना और फिर गंगा, इसी प्रकार यात्रा करते हुए एक काले प्रभात में अधीरथ को गंगा से तुम प्राप्त हुए। तब से लेकर आज तक तुम सार्थक रूप में बड़े हुए हो। अपने दिव्य कुल का उत्तराधिकार ज्ञात न होने के कारण दुर्भाग्य के चक्कर में पड़ गए। कर्ण, कर्ण तुम सारथी नहीं हो, दुर्योधन के अन्यायी पक्ष में खड़े मत हो। संसार में किसी को भी प्राप्त न हुए होंगे ऐसे तीन पिता और तीन माताएं तुम्हें प्राप्त हुए। सूर्यदेव, महाराज पांडु और अधीरथ का पितृछत्र तुम्हारे ऊपर है। कुंती देवी, राधा और गंगा का मातृत्व तुम्हारे लिए तरस रहा है। कर्ण, आज का एकमात्र दिन तुम्हारे जीवन को आमूलाग्र मोड़ देने का है। तुम्हारा कुल श्रेष्ठ है, तुम्हारा उत्तराधिकार दिव्य है, पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं, तुम प्रथम पांडव हो, ज्येष्ठ कौंतेय हो। उनके एक एक शब्द के साथ भावना की एक एक प्रचंड लहर मेरे मन के किनारों पर घोर गर्जन करती हुई टकराने लगी। क्षण भर में जिस दिन चंपानगरी हस्तिनापुर में आया था उस दिन से लेकर अब तक का मेरा जीवन आंखों के आगे जोर से घूमने लगा, जैसे विराट रूप धारण किए हुए श्री कृष्ण के दाएं हाथ में सुदर्शन। घटनाओं का असंख्य तीक्ष्ण दांत हृदय में कसकने लगे। साक्षात तेज का पुत्र होते हुए भी इस दीर्घ जीवन क्रम में अपमान, वंचना, अवहेलना और उपेक्षा के अतिरिक्त मैंने और क्या अनुभव किया था? मैं कहाँ से कहाँ आ गया था? जीवन का क्या अर्थ है? किसी के अपराध का हृदय विदारक इतना महान दंड किसी और को मिले, यही जीवन में है क्या? साक्षात सूर्यपुत्र होते हुए भी मेरा जीवन नियति के कितने क्रूर थपेड़े खाते हुए आया था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जिस अग्निगर्भ से मैंने जन्म लिया था उस अग्नि का मुझे कभी विस्मरण न हो, इसी लिए नियति ने जीवन की यह आग मुक्त हस्त से मेरे स्वर्ण मस्तक पर उलेड़ दी थी? सूर्यपुत्र, सूतपुत्र नहीं सूर्यपुत्र, राधेय नहीं कौंतेय, 101वां कुरु नहीं प्रथम पांडव। मैं स्वयं यह चित्र समझ नहीं पा रहा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। श्री कृष्ण कह रहे थे इसीलिए इस बात को मैं सत्य मान सकता था, नहीं तो। कर्ण, अज्ञानवश तुम अब तक कौरवों के लिए सतत जर्जरित होते रहे हो, व्यर्थ जर्जरित हुए हो, पांडवों का विरोध करते आए हो, सगे भाइयों से द्वेष करते आए हो, अब सत्य जानकर भी क्या तुम वैसे ही रहोगे? ध्यान रखो, विकास और वृद्धि ही जीवन के लक्षण हैं। आज तुम एक बंदी ही रहे, कीर्ति से यद्यपि असाधारण हो गए, तथापि मन से कुंठित ही रहे हो। मैं तुम्हारा ममेरा भाई होने के नाते तुम्हारा आह्वान करता हूँ, चलो अपने घरौदों की ओर लौट चलो, अपने रक्त में चलो, पांडवों में अपने बंधुओं में चलो। वे उपलाव्य की ओर उंगली उठाकर कह रहे थे। उनकी बातें सुनकर मैं यही नहीं समझ पा रहा था कि क्रूर काल ने मेरे जीवन के आमर वृक्ष की कटीली भूमि में क्यों लगाया था। मन एकदम बधिर हो गया। ऐन संकट की घड़ी में विश्वासघात करके क्या कुरुओं को छोड़ दूं? सारथियों के दलदल में पड़े हुए मेरे जीवन कमल को जिसने अपने हाथों से एक ही रात में राज सिंहासन पर चढ़ा दिया था, उस दुर्योधन की पीठ में खड्ग भोंक कर क्या पांडवों की ओर चला जाऊं? जिसने मेरे सुख दुखों को अपने औरस पुत्र के सुख दुख की अपेक्षा श्रेष्ठ माना था, उस राधा माता को ठुकरा कर कुंती देवी से जाकर लिपट जाऊं? नहीं नहीं, मैं कौंतेय नहीं, मैं राधेय ही हूं। नहीं, मैं सूर्यपुत्र नहीं, मैं सूतपुत्र ही हूं। संस्कारों ने जो बनाया है वही मेरा जीवन है, नियति ने जो दिखाई है वही मेरी दिशा है। कर्ण, अधिक सोच विचार मत करो, चलो मेरे साथ रथ पर चढ़ो और उपलब्ध चलो। धर्मशास्त्रानुसार तुम पांडु राजा के कानीन पुत्र हो, ज्येष्ठ पांडव हो, वेद वेत्ता ब्राह्मणों में रहकर तुमने अपना धर्म ज्ञान बढ़ाया है, ब्रह्मचर्य और अर्घदान, आत्मसंयम, दान सत्र आदि से तुम महत्पद पर पहुंच गए हो। प्रत्येक पांडव एक गुण में श्रेष्ठ है, परंतु तुम तो सभी गुणों से युक्त हो। प्रथम पांडव यह सार्थ नानाभिधान भी ही तुम्हें शोभा देता है। चलो कर्ण, अब विश्वासवत मार्ग की ओर चलो, अभी समय है, मेरा कहना मान लो, चलो चिर वियोग सहने वाले अपने कुंती माता के पास चलो, बंधु प्रेम के लिए आतुर बांधवों के पास चलो। इस समस्त राज्य का अभिषेक आज बंधु के रूप में पांडव तुम्हारा ही करेंगे। हाथ में श्वेत शुभ्र चौमर लेकर युधिष्ठिर विनत भाव से तुम्हारे सिर पर डुलाया करेगा। तुम्हारे रथ में चढ़ने के लिए ही परिचारक के रूप में तुम्हारे पीछे ही वह रथ पर चढ़ेगा। सामर्थ्यशाली भीमसेन तुम्हारे सिर पर विनम्रतापूर्वक छत्र धारण करेगा, और जिसको तुम अज्ञानवश आज तक शत्रु मानते आए हो वह तुम्हारा ही भाई धनुर्धर अर्जुन तुम्हारे रथ का सारथ्य करेगा। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के ये पांच पुत्र दुष्टदुम्न सबके सब तुम्हारे निग्रहवान अनिंद्य नेतृत्व के अनुचर बनेंगे, वज्र जैसे एक मार्गी वचन के विनयशील दास बनेंगे। इतना ही नहीं, अभी तो अपितु वृष्णी और अंधक कुलों के सभी पराक्रमी योद्धाओं सहित प्रत्यक्ष स्वयं मैं भी तुम्हारा अनुचर बन जाऊंगा। उद्धव, बलराम, सात्यकी, उग्रसेन आदि सभी पांडव राजा के रूप में तुम्हें आदर से सिर नवाएंगे। प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चित्रगु, भानुसेन मेरे ये पुत्र तुम्हारे आज्ञाधीन रहने में स्वयं को धन्य मानेंगे। वीर अभिमन्यु तुम्हारे चरणों को स्पर्श किए बिना कभी तथारूढ़ नहीं होगा, और सुगंधित शरीर के श्यामल आदा द्रौपदी पति के रूप में तुम्हारे तलवों पर चंदन मिश्रित उबडन मलेगी। चलो, विगत 70 वर्षों से अखंड भाव से पुत्र वियोग की दारुण यातनाओं में जलती हुई तुम्हारी जन्मदात्री माता का हृदय तुम्हारे दो अश्रुबिंदु उसके वृद्ध चरणों पर पड़ते ही कृतार्थता की अनुभूति से शांत हो जाएंगे। राजा वसुषेण के रूप में तुम्हारी कीर्ति के डिंडिम से आर्यावर्त ही नहीं अपितु त्रैलोक की दिशाएं भी गुंजमान हो जाएंगी। सम्राटों के सम्राट के रूप में आर्यों की अनेक पीढ़ियां तुम्हारा शुभ नाम सुप्रभात में मुखों से उच्चार करेंगी। नहीं तो कौरवों के अन्याय पक्ष का समर्थन कर अहम भाव से सारे आर्यावर्त को युद्ध की खाई में धकेलने वाला, मिथ्या आदर्शों को हृदय से लगाकर स्वयं जलकर अन्यों को दग्ध करने वाला, तेज का पुत्र होने पर भी अंधकार में समाप्त हो जाने वाला, इसी रूप में तुम्हारी स्मृतियाँ कोटि कोटि आर्यों के मन को लक्ष लक्ष वर्षों तक अनुकंपा से सदैव खोखला करती रहेंगी। चलो मेरे साथ रथ पर आरूढ़ हो जाओ। मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने मुझे रथ की ओर खींचा। निग्रहपूर्वक धरती में पैर गड़ाकर मैं बोला, नहीं मधुसूदन, किसकी स्मृतियाँ कैसी रहेंगी इससे मेरा कुछ भी संबंध नहीं। केवल आज की यह स्मृति मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। घनश्याम, मेरा हाथ तुम्हारे मृदुलतम हाथ में है। मैं सूर्य पुत्र हूँ इस प्रतीति से वह प्रकंपित हो रहा है। जीवन की धन्यता का अन्य कोई भी अर्थ मुझे मान्य नहीं। तुम ही बताओ, सूर्य का पुत्र और ज्येष्ठ कौंतेय होकर मैं उस दिव्यकुल के अनुरूप आचरण करूँ या पथभ्रष्ट हो जाऊँ? सूर्य की किरण क्या कभी वक्र गई है? एक बार जो पकड़ ली, वही दिशा, वही दल, वही पक्ष, राज्य, संपत्ति, कीर्ति, प्रेम के बंधन कोई भी पास सूर्य किरणों को बद्ध नहीं कर सकता। तुम राज्य दोगे तो उसे भी मैं दुर्योधन के चरणों पर डालूंगा। पांडव मेरे अनुचर हो जाएंगे तो उनको सेवक के रूप में राजा दुर्योधन के सभागृह में खड़ा करूंगा। कर्ण और पांडव, ये जीवन रेखा इस जन्म से जुड़ी हुई हो सकती है, परंतु दुर्योधन और कर्ण ये पूर्व जन्म से जुड़ी हुई जीवन रेखाएं हैं। कहो गोपाल, गोपालों ने क्या एक ही डाल पर खिले हुए सभी पुष्प तुम्हारे चरणों पर अर्पित किए हैं? जिसके निश्चल स्नेह के बल पर मैंने वर्षों तक अखंड भाव से समुद्र वलयांकित राज्य सुख का आज तक अमित उपभोग किया, उस दुर्योधन को विश्वासघात के गहरे गर्त में धकेल कर स्वार्थ और प्रेम के वशभूत होकर पांडवों का पक्ष कैसे स्वीकार करूं? क्या यह सूर्य पुत्र को शोभा देगा, जिस वृषाली ने सारथी कन्या होकर भी जीवन भर भावगंधित सहयोग मुझे दिया है, मेरा साथ निभाया है, जैसा कि द्रौपदी भी कभी नहीं निभा सकती थी, उस अपनी पत्नी को केवल द्रौपदी के सुगंधित सौंदर्य के लिए ठुकरा दूं? क्या यह कौंतेय के लिए कीर्तिप्रद होगा, जिसने मेरा मलमूत्र साफ करते समय भी वसु वसु कहकर प्रेम से पुत्र के रूप में मेरे मस्तक का आग्रहण किया है? उस राधा माता को भ्रांत चित्त माता कुंती के लिए दूर धकेल दूं, जिन्होंने केवल जन्म का दान देकर बिना नर काटे ही मुझे अश्व नदी की गृहस्थी धारा में बहा दिया था? नहीं माधव, यह संभव नहीं। साक्षात मृत्यु की मुक्त वर्षा से मेरे मस्तक पर हो तो उसे मैं सहन कर लूंगा, परंतु स्वत्व का ऐसा घोर मरण मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। आज इस अवसर पर एक विचित्र योगायोग पर मुझे अवश्य आश्चर्य हो रहा है। तुमने एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और दुर्भाग्य से गोकुल की गौशाला में बड़े हुए। यशोदा माता ने तुम्हारा पालन किया। मैंने भी एक दिव्य कुल में जन्म लिया और दुर्भाग्य से चंपा नगरी की अश्वशाला में बड़ा हुआ। राधा माता ने मेरा पालन किया। कर्तव्य के रूप में तुमको अपने मामा कंस पर मुष्टि प्रहार करना पड़ा था, मुझे भी कर्तव्य के रूप में कल भाइयों पर प्रहार करना पड़ेगा। परंतु क्या कर्ण, कहो, स्पष्ट कहो। वे मेरी आंखों में फिर गहराई तक झांकते हुए बोले, ऋषिकेश, तुमने यशोदा माता का त्याग किया है, पर मैं राधा माता का त्याग कभी नहीं करूंगा। तुम गोकुल के गोपालों को भूल गए हो, मैं चंपा नगरी के सारथियों को कभी नहीं भूलूंगा। आर्यावर्त को युद्ध की खाई में धकेलने वाला, स्वयं जलकर अन्यों को दग्ध करने वाला, तेज का पुत्र होकर भी अंधकार में समाप्त हो जाने वाला, इन कटु स्मृतियों से आर्यों के कोटि कोटि मन लक्ष लक्ष वर्षों तक मेरे लिए कभी नहीं कसकते रहेंगे। हाँ, वे कसकते रहेंगे तुम्हारे लिए। मेरे लिए किस न्याय पक्ष की संधि का प्रस्ताव लेकर आए हो तुम? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों ने भोगा। इस बात को व्याकुल होकर कहने वाले श्री कृष्ण, इसके लिए उन्होंने द्युत खेला था, इससे तो तुम इनकार नहीं करते हो ना? परंतु बिना किसी द्युत के खेले ही मैंने जीवन भर जो घोर घृणामय अज्ञातवास सहन किया है, क्या उसके लिए भी तुम्हारे न्यायप्रिय मन में कहीं तीव्र वेदनाएं कह सकती हैं? यदि वे हुई होती तो तुमने मुझसे पांडवों की ओर आने का आग्रह कभी न किया होता। घनश्याम, एक राजनीतिज्ञ के रूप में आकर भी तुम मुझे आज भावनामय आह्वान कर रहे हो। केशव, कटु होते हुए भी यह सत्य है, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, इसलिए उदार हृदय से मुझे क्षमा कर दो। तुम महान हो, दिव्य हो, मेरे अंतःकरण में तुम्हारे प्रति शब्दातीत नितांत प्रमोदर है। इसीलिए जो महायज्ञ तुम प्रज्वलित करने जा रहे हो, उसमें अपने देह की यह सुवर्ण संविधा में निर्भय होकर सहर्ष अर्पण करूंगा। जगत में कभी हुआ नहीं होगा, आगे कभी होगा भी नहीं, ऐसा ही दिव्य महायज्ञ वह होगा। पुरुषोत्तम, पांडवों के और कर्ण के मिलने का समय अब कब का बीत चुका है। जाओ कृष्ण, मैं जानता हूं कि इस महायज्ञ के अर्धवर्य तुम ही हो। होता कपिध्वज अर्जुन है, सैनिक योद्धाओं का तेजस्वी विक्रम ही आज्य है। ब्रह्म, ऐन्द्र, वरुण, अग्नि, पाशुपत आदि अस्त्रों के निक्षेपण के समय योद्धाओं द्वारा उच्चरित महामंत्र ही यज्ञ मंत्र है। अर्जुन का अक्षय बाणों से युक्त गांडीव की श्रुवा और उसका पुत्र अभिमन्यु वीरों को सावधान करने के लिए जिस सिंहनाद का उच्चारण करेगा वही इस यज्ञ का सामगायन होगा। गगनभेदी आवाज वाला भीम उद्गाता धर्मपरायण युधिष्ठिर ब्रह्मा नकुल सहदेव सामित्र और तुम्हारे यादव कुल के विक्रमी सातकी उसमें उप अर्धवर्य होंगे। रणवाद्यों की ध्वनि गगनमंडल भेदने वाली शंख ध्वनियां तथा वीरों की सिंह गर्जनाएं ये उस यज्ञ की पवित्र ऋचाएं होंगी। ध्वज दंड रथनीण और हाथियों के ऊपर की अंबारियां पशु बलि के लिए महान यूप होंगे। गदा खड्ग बाण त्रिशूल तोमर भाले ये अस्त्र दर्भ होंगे। राजा दुर्योधन ने अपनी कुरुसेना को पत्नी मानकर ही उसके साथ आज इस दिव्य महायज्ञ की दीक्षा ली है और ऐसे इस महायज्ञ में मैं अपने इस स्वर्ण शरीर को हेम संहिता हंसते हुए अर्पित करूंगा। न भूतो न भविष्यति ऐसा ही यह महायज्ञ होगा। श्याम सुंदर नियति ने मुझे ऐसी परिस्थिति पर ला खड़ा कर दिया है कि मुझे आज तुमसे भी इनकार करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा तुम्हारे इस फुफेरे भाई का हृदय अक्षरश तिल तिल कर टूट रहा है। जाओ यादव राज, यदि कर सको तो इस बात के लिए इस अभागे कर्ण को क्षमा कर देना। पांडवों की और मेरी जीवन रेखाएं पूर्ण रूप से भिन्न है। अब वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे को ग्रस्त करेंगे। केंद्र बिंदु रूपी कुंती माता भी अब उसको कभी मोड़ नहीं पाएंगे। मनमोहन फूलों में अमित रस भरा हुआ होता है, परंतु कुछ बीज होते हैं। रस होता है स्वयं नष्ट होकर बीजों को पुष्ट करने के लिए। मैं उस रस जैसा ही हूँ। मेरे आत्मार्पण पर भी पांडवों के बीज अंकुरित हों, फले फूलें, यही शायद नियति का उद्देश्य है। जाओ कृष्ण, अश्व नदी के जल की तरह पांडवों से मिलने का समय कब का प्रवाहित हो चुका। अब कर्ण या पांडव या भवितव्य अटल है। मृत्यु की प्रकंपित कर देने वाली निर्दय वनिका के पार मैं बहुत पहले जा चुका हूँ। सूतपुत्र अंगराज दानवीर दिग्विजयी धनुर्धर कर्ण इनमें से किसी भी रूप में मैं नहीं लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा अंधकार के सघन साम्राज्य का उदर भेद करने वाले प्रखर सूर्य किरण बनकर। पिता सूर्य, माता कुंती देवी, मेरे बंधु श्री कृष्ण, बंधु पांडव, इन सबके नातों के अनुरूप वीर कर्ण के रूप में। जनार्दन इंद्र को कवच कुंडल दान करने वाला कर्ण युद्ध में योद्धाओं के हाथ पैर और कवचों का भेद करेगा। सूर्यदेव को जीवन भर अर्घ दान करने वाला कर्ण रणांगण में वीरों को मौत के घाट उतारेगा। जीवन भर राधा माता का चरण धोने वाला कर्ण वीरों के रक्त से अविस्पूर्ण पावन आर्यभूमि का चरण धोएगा। जीवन भर अभिशप्त रहने वाला कर्ण सबको स्वर्ग का वरदान देगा। जीवन भर अवमानित होने वाला कर्ण संग्राम में सबको गौरवान्वित करेगा। जाओ यदुकुलावतंस, शांत चित्त से महायज्ञ की तैयारी करो। एक प्रार्थना और है। पांडवों को यह कभी मत बताना कि मैं उनका ज्येष्ठ बंधु हूँ, फिर वे मुझसे कभी नहीं लड़ेंगे। जाओ बंधुवर, कर्ण का राजरत्न पांडवों के राजमुकुट में कभी नहीं लग सकता, यह उनको अपने रस भरी वाणी से समझा कर कह दो। और इस सुतपुत्र का अंतिम भाव प्रणाम उदार अंतकरण से स्वीकार कर लो। गुडाकेश, तुमको देने के लिए यह भाव प्रणाम ही अब मेरे पास बचा है। मैं उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए झुका। मेरी आंखों से निकले हुए दो अश्रुबिंदु उनके चक्र चरणों पर गिर पड़े। क्षण भर थर थर आए और नीचे मिट्टी में लीन हो गए, अदृश्य हो गए। जयतु राधेय कर्ण, उन्होंने मेरे कंधे पकड़कर मुझे उठाया और प्रगाढ़ आलिंगन में भर लिया। धन्यता की भावना से बहता हुआ मेरी आंखों से आंसुओं का प्रवाह उनकी नीली पीठ की सुंदर प्रणाली में होकर टपकने लगा। जैसे ही उनके अश्रुबिंदु मेरे मस्तक पर पड़े, मुझे लगा जैसे जीवन की दिग्विजय पूर्ण हो गई हो। इतने सौभाग्य का, इतने गौरव का, इतनी धन्यता का, उच्चता का क्षण और कभी नहीं आएगा। अपने हाथ में मेरा हाथ हौले से छुड़ाकर पश्चिम क्षितिज पर एक दृष्टि डालकर मंद गति से चलते हुए वे रथारूढ़ हो गए। बलगाया हाथ में लेकर रथनीर पर खड़े हो गए। अपने शुभ्र घोड़ों पर प्रहार करने के लिए उन्होंने प्रतिरोध उठाया। उनकी और मेरी यह अंतिम भेंट थी। मन के भंडार में पड़ा हुआ एक हृदय द्रावक अंतिम दुख भी मैं उनके अधीन कर देना चाहता था। सबसे मुक्त हो जाना चाहता था, वायु की तरह, सूर्य किरणों की तरह। माधव ठहरो, हाथ उठाकर मैंने उनको पुकारा। प्रदूत को ज्यों का त्यों ऊंचा उठाए हुए आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगे। मैं दौड़कर गया और उनके रथनीड़ पर हाथ रखकर धीरे से उनसे बोला, मैं तुमसे कभी यह नहीं कुछ मांगा नहीं, आज मांग रहा हूँ। क्या मेरा एक कार्य कर सकोगे? तुम केवल तुम्हें उसके योग्य हो। कहो कैसा कार्य राधेय? उनकी भावें ऊंची हो गई। अच्युत उस विशालाक्षी श्यामल भावगंधित द्रौपदी से कहना कि कर्ण के अंतःकरण की पीड़ा का एक भग्न तार तुम्हारी अवहेलना की अनुभूति से सदैव कर्कश स्वर में झंकृत होता रहा है, परंतु पांच पति की पत्नी होकर भी पतिव्रत के पवित्र शिखर पर पहुंची हुई उस एकमात्र आर्या से पांचाली से कहना कि यदि कर सके तो इस कर्ण को क्षमा कर देना। वलगांवों को उछाल कर उन्होंने रथ को विदुर जी की पर्णकुटी की ओर मोड़ दिया। चक्रों के नीचे उड़ने वाले धूल मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगी। थोड़ी देर बाद ही वह शांत हो गई, परंतु मेरे मन में विचारों का वात्या चक्र शांत नहीं हुआ। जिस पर्णकुटी में राजमाता थी उस ओर पीठ फेर कर मैं राजभवन की ओर लौटा। राजमाता थी केवल मुझे जन्म देने वाली, राजभवन में राधा माता थी जो कुछ मैं था वह बनाने वाली, मेरा निर्माण करने वाली।